केसेट नंबर 35 यहाँ से शुरू होती है। किताब उनवान अल्लाह के सफीर। ये किताब नाबीना ख्वातीनों हजरात की खिदमत में पेश की जा रही है, जिसे आपके लिए शमसा गजाला रिकॉर्ड कर रही हैं, जिसे आपके लिए मोहम्मद अजहर लतीफ ने पेश किया है। किताब अल्लाह के सफीर को खान आसिफ ने तहरीर किया है। मौलाना निजामुद्दीन, पीर और मुर्शिद का इशारा तुम्हारी तरफ है। ये सुनते ही हजरत निजामुद्दीन औलिया की हालत गैर हो गई। बेख्तियार अपनी निशित से उठे, सर बरहना किया और हजरत शेख के सामने खम हो गए। माजल्ला, मेरा ये मकसद हरगिज नहीं था। हजरत निजामुद्दीन औलिया पीर मुर्शिद के हाथ पकड़कर रो रहे थे। सैयदी, मैं तो हजरत की साथ गिरामी पर एतराज करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हजरत निजामुद्दीन औलिया बहुत देर तक गिरिया उजारी करते रहे, मगर हजरत बाबा फरीद के चेहरे मुबारक पर अक्स मलाल नुमाया रहा, यहाँ तक कि आप दरगाह से उठकर अपने हुजरे खास में तशरीफ ले गए। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने हमसबक साथियों की तरफ देखा और नहायत रिक्कत तामीज लहजे में फरमाया, अब मैं क्या करूँ? मुर्शिद खफा हो गए, दुनिया भी गई और आखिरत भी। तमाम साथी खामोश रहे, किसी में इजहार राय की जुर्रत नहीं थी, कोई कैसे मुदाखलत करता? उसे भी रांदा दरगाह हो जाने का अंदेशा था। हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने हुजरे में चले आए, मगर एक लम्हे के लिए भी करार हासिल नहीं था। सारी रात जागते और रोते गुजार दी। दूसरे दिन दर्स में हाजिर हुए, मगर हजरत बाबा फरीद ने कोई तवज्जो नहीं दी। बेताबाना अपने निशिश से उठे और पीरो मुर्शिद के सामने रो रो कर अर्ज करने लगे, वल्लाह इसमें मेरे इरादे का कोई दखल नहीं था, ये जबान की लग्जिश थी, दिल और दिमाग की नहीं। हजरत बाबा फरीद ने कोई जवाब नहीं दिया, आपके चेहरे मुबारक पर अक्स मलाल अब भी नुमाया था। हजरत निजामुद्दीन औलिया उठे और उल्टे कदमों चलते हुए दरगाह से निकलकर जंगल की तरफ चले गए। दीवाना वार रोते थे और बार बार अपने आप को मुखातिब करके कहते थे, निजामुद्दीन, इस दुनिया में तुझसे ज्यादा बदनसीब कौन होगा? ये इस्तराब हद से बढ़ा तो एक कुएं के करीब पहुंचे और चाहा कि अपने आप को पानी में गर्क करके इस जानलेवा कर्ब से निजात हासिल कर लें। फिर ख्याल आया कि खुदकुशी हराम है और अगर खुदकुशी जायज भी होती तो जुर्म अपनी जगह फिर भी बरकरार रहता। इसके साथ ये ख्याल भी आया कि अगर तो कुएं में डूब गया तो कितने अफसाने बनेंगे, पता नहीं इस जुर्म में कितने बेगुनाह लोगों से बासपुरस की जाए। अलगर्ज हजरत निजामुद्दीन औलिया अजीब दौरे वहशत से गुजर रहे थे, कई दिन तक खाना नहीं खाया। आखिर हजरत बाबा फरीद के एक साहबजादे हजरत शेख शहाबुद्दीन आपको तलाश करते हुए जंगल पहुंचे। हजरत निजामुद्दीन औलिया की शिकस्ता हालत देखकर खुद भी रोने लगे, मौलाना ये क्या हाल बना रखा है? हजरत निजामुद्दीन औलिया कोई जवाब ना दे सके, बस आंखें अश्क बरसाती रहीं, गोया आंसू ही आपके गम के तर्जुमान थे। हजरत शेख शहाबुद्दीन और हजरत निजामुद्दीन औलिया में गहरी दोस्ती थी। पीरो मुर्शिद की नाराजगी के खौफ से दूसरे मुरीद तो पुरतिश हाल ना कर सके, मगर हजरत शेख शहाबुद्दीन अपने साथ खाना लेकर गए थे। मौलाना कब तक फाके करोगे? अब कुछ अच्छा नहीं लगता, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, मेरी खातिर चंद लुकमे ही खा लो। हजरत शेख शहाबुद्दीन ने कहा, मैं बाबा जान से अर्ज करूंगा। ये नवीद सुनते ही ऐसा लगा जैसे निजामुद्दीन औलिया के तने मुर्दा में जान पड़ गई। फिर एक दिन तन्हाई में शेख शहाबुद्दीन ने हजरत बाबा फरीद से अर्ज किया, मखदूमी, मौलाना निजामुद्दीन का बहुत बुरा हाल है, अब आप इन्हें माफ फरमा दीजिए वरना आपके कदमों से ये दूरी उन्हें हलाक कर डालेगी। शहाबुद्दीन, मैं भी उसकी जुदाई में मुस्तरिब हूँ। हजरत बाबा फरीद के लहजे से उदासी का रंग नुमाया था। लोग उसे मातूब ना समझें, वो मेरा महबूब है, मगर इश्क में एक ऐसा मुकाम भी आ जाता है जिससे गुजरे बगैर इंसान की तकमील नहीं होती। फिर मौलाना निजाम के लिए क्या हुक्म है? शेख शहाबुद्दीन ने अर्ज किया, इसे मेरा सलाम पहुंचाओ और कहो कि दरगाह उसकी मुंतजिर है। हजरत बाबा फरीद ने फरमाया, अब हजरत शेख शहाबुद्दीन ने हजरत निजामुद्दीन औलिया को ये मुजदा सुनाया तो आप शिद्दत जज्बात में रोने लगे। अब क्यों रोते हो मौलाना? शेखजादा शहाबुद्दीन ने पूछा। इस वक्त बदबख्ती के एहसास ने रुलाया था, अब खुशबख्ती पर आंसू बहाता हूँ। बहुत देर तक हजरत निजामुद्दीन औलिया पर वारिस्तगी का आलम तारी रहा। फिर खानकाह में हाजिर हुए और हजरत शेख के सामने इतना रोए कि हाजरीन मजलिस की आंखें भी नम हो गईं। अगर बाबे करम वा ना होता तो ये सवाली कहाँ जाता? हजरत निजामुद्दीन औलिया ने हिचकियों के दरमियान अर्ज किया, हमने तुम्हें दिल्ली से इसलिए तो नहीं बुलाया था कि कहीं और चले जाने देते। हजरत बाबा फरीद का दस्ते मेहरबान साया फिगन था और जमाने मुबारक से मोहब्बत के चश्मे फूट रहे थे। एक बार आ गए तो बस आ गए, अब जहां भी रहोगे हमारे ही रहोगे। फिर जब आतिशे फराक बुझ गई तो हजरत निजामुद्दीन औलिया पीर मुर्शिद के सामने दुजानू होकर बैठे। मौलाना निजाम, मैंने ये सब कुछ तुम्हारी तकमील के लिए किया। हजरत बाबा फरीद ने अपने मुरीद बासफा को मुखातिब करते हुए फरमाया, शुक्र है उस मालिक के हकीके का जिसने अपने बंदे की दस्तगीरी की और इस वादी खारजार में मुसाफिर इश्क को साबित कदम रखा। उसके बाद हजरत बाबा फरीद ने हजरत निजामुद्दीन औलिया को अपने पैरहन खास से सरफराज फरमाया। दरअसल यह हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की आजमाइश थी। इनकी मोहब्बत और जर्फ को देखना भी था और दूसरों को दिखाना भी। हजरत निजामुद्दीन औलिया एक आलिम व फाजिल शख्स थे और पूरी दिल्ली में महफिल शिकन के नाम से मशहूर थे। नौमरी के बावजूद उलेमाए वक्त आपका एहतराम करते थे। एक जरा सी बात पर पीर मुर्शिद का नाराज हो जाना और हाजरी ने मजलिस के सामने बरहमी का इजहार करना कोई मामूली वाकया नहीं था। अगर हजरत निजामुद्दीन औलिया की अकीदत सतही होती तो अर्ज कर सकते थे कि सिर्फ इस इत्तला पर कि शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल के पास बेहतर नुस्खा मौजूद है, इस कदर गैज़ो गज़ब क्यों? जाहिर की निगाह में ये कोई गुस्ताखी नहीं थी, मगर इश्क की नजर में ये जुर्म अजीम था कि हुजूर शेख लब कुशाई क्यों की। हजरत निजामुद्दीन औलिया का इश्क सच्चा था, इसलिए गलती के एहसास ने आपको कई दिन तक रुलाया। पीर मुर्शिद की नाराजगी को दीनों दुनिया की बर्बादी समझा। एहसास की यही गहराई हजरत निजामुद्दीन औलिया की इश्क की सदाकत पर गवाही देती है। इम्तिहान ये था कि दिल्ली का महफिल शिकन अनापर्स्त है या नियाजमंद। अगर हजरत निजामुद्दीन औलिया अनापर्स्त होते तो पीर मुर्शिद के अंदाज तकाफुल से दिल बर्दाश्ता होकर दिल्ली वापस जा चुके होते, मगर चूंकि नियाजमंद थे इसलिए दामन फैलाए मुर्शिद के दर पर पड़े रहे। और फिर यही कासा लेसी आपके काम आ गई। पहले पीरू मुर्शिद के महबूब हुए और बाद में महबूब इलाही बन गए। इसी जमाने में हजरत निजामुद्दीन औलिया के एक फाजिल दोस्त किसी काम से अजूदन आए। जब हजरत निजामुद्दीन औलिया को खबर हुई तो आप मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए। वो दोस्त अपने किसी शनासा के मकान पर ठहरे थे और ये मकान अजूदन के बाजार में वाकया था। हजरत निजामुद्दीन औलिया के फटे पुराने कपड़े देखकर दोस्त को शदीद तकलीफ पहुंची। मौलाना निजामुद्दीन, ये क्या हाल बना रखा है? दोस्त ने इंतहाई अफसरदा लहजे में कहा। अल्लाह अपने बंदे को जिस हाल में भी रखे मुकाम शुक्र है, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने टालने की कोशिश की। तुम कैसे हो? अहले खाना आफियत से हैं? इसके बाद दिल्ली के दूसरे दोस्तों की खैरियत पूछते रहे। दोस्त ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उदास नजरों से हजरत निजामुद्दीन औलिया की जाहिरी हालत को देखता रहा। मौलाना निजाम, तुम्हें वो दिन याद है जब मैं और तुम दिल्ली की इल्मी मजलिसों में मुनाजरे किया करते थे? हाँ याद है, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया। फिर तुमने ये कैसी जिंदगी इख्तियार की है? दोस्त ने अफसोस करते हुए कहा। अगर तुम दिल्ली में कयाम करते और दसों तदरीस में मशगूल होते तो मुश्तहिद जमाना कहलाते और बड़ी शान और शौकत से जिंदगी गुजारते। तुम्हारा हुस्ने जन अपनी जगह, मगर मैं इस तर्ज जिंदगी से राजी हो चुका हूँ, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया और दोस्त से गुजरे जमाने की बातें करते रहे। फिर जब खानकाह में वापस पहुंचे तो पीर मुर्शिद ने तलब करके फरमाया, मौलाना निजाम, अगर किसी दोस्त से तुम्हारी मुलाकात हो और वो तुमसे कहे कि ये क्या हाल बना रखा है और दर्स व तदरीस का वो सिलसिला क्यों छोड़ दिया जो फारिगुल बाली और खुशहाली का जरिया बनता, और तुम ये कैसी जिंदगी बसर कर रहे हो? पीर मुर्शिद के इरशादात सुनकर हजरत निजामुद्दीन औलिया हैरतजदा रह गए। हजरत बाबा फरीद ने दोस्त से मुलाकात का हाल इस तरह बयान कर दिया जैसे आप बनफसे नफीस वहां मौजूद थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया को हैरान पाकर पीर मुर्शिद ने फरमाया, मौलाना तुम अपने इस दोस्त के सवालों का क्या जवाब दोगे? जो पीर मुर्शिद का हुक्म हो, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अर्ज किया। अगर कभी कोई दोस्त ये सवाल करे तो उसके सामने ये शेर पढ़ देना, हजरत बाबा फरीद ने फरमाया, तू मेरा हम सफर नहीं हो सकता इसलिए अपना रास्ता पकड़, तुझे तेरी खुशबख्ती मुबारक हो और मुझे मेरी शिकस्ता हाली। इसके बाद हजरत शेख ने हुक्म दिया कि मुख्तलिफ अकसाम के खाने एक खान में सजाओ और फिर इसे अपने सर पर रखकर दोस्त के पास ले जाओ। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने ऐसा ही किया। फिर देखने वालों ने देखा कि दिल्ली का महफिल शिकन बोसीदा लिबास में सर पर खान रखे हुए अजहुदन के बाजार से गुजर रहा था। लोग तमाशाई थे मगर हजरत निजामुद्दीन औलिया इस एजाज पर नाजा थे जैसे सर पर खान नहीं ताज शाही रखा हो। दोस्त ने यह मंजर देखा तो रोता हुआ दौड़ा और हजरत निजामुद्दीन औलिया के सर से खान उतारा। मौलाना तुमने ये क्या किया? हजरत निजामुद्दीन औलिया ने सारा वाकया बयान कर दिया। तुम्हारे शेख बड़े जबरदस्त हैं कि उन्होंने तुम्हें चंद दिनों में नफ्स कशी के इस मुकाम पर पहुंचा दिया है। दोस्त ने बेख्तियार कहा, वल्लाह तुम्हारे शेख आरिफ हैं, मुझे भी उनके पास ले चलो। खाने के बाद दोस्त ने अपने मुलाजिम से कहा, ये खान उठाओ और हमारे साथ चलो। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने इनकार कर दिया। जिस तरह मैं इस खान को अपने सर पर रखकर लाया था इसी तरह वापस लेके जाऊंगा। फिर वो फाजिल दोस्त जिसे अपने इल्म पर बड़ा नाज था हजरत बाबा फरीद के खिदमतगारों में शामिल हो गया। 7.5 माह के क्याम के बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया पीर और मुर्शिद की इजाजत से दोबारा तशरीफ लाए। अजूदन से रुख्सत होते वक्त हजरत बाबा फरीद ने महबूब इलाही को नसीहत करते हुए फरमाया था, जिस तरह भी मुमकिन हो अपने दुश्मनों को खुश रखने की कोशिश करना और जिस किसी से कर्ज लो उसकी अदायगी से गाफिल ना होना। हक ताला तुम पर मंजिल आसान फरमाए। वाज़ह रहे कि हजरत निजामुद्दीन का लकब महबूब इलाही है। गर्ज पीर मुर्शिद की दुआओं के साए में हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली की जानिब रवाना हुए। रास्ते में एक घना और तारीक जंगल पड़ता था। इत्तफाक से उस रोज बारिश भी हो गई जिसने फजा को मजीद तारीक और पुरहौल बना दिया था। अचानक 5-6 कज़ाक बेनियाम तलवारें लिए हजरत निजामुद्दीन औलिया की तरफ बढ़े। इस वक्त आप बारिश से बचने के लिए एक तनावर दरख्त के साए में बैठे थे। कज़ाकों को देखकर हजरत निजामुद्दीन औलिया ने दिल में सोचा, मैं गरीब मुसाफिर हूँ, मेरे पास मालो मता नाम की कोई शय नहीं, अगर कुछ है तो बस पीर और मुर्शिद का यह दिया। इस वक्त हजरत निजामुद्दीन औलिया हजरत बाबा फरीद का अता करदा पैरहन जेबतन किए हुए थे और कंबल ओढ़े हुए थे। अगर उन कज़ाकों ने पीर और मुर्शिद की निशानियां मुझसे छीन ली तो मैं हरगिज किसी आबादी में नहीं जाऊंगा और जिंदगी भर किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल ही दिल में सोच रहे थे और कज़ाक तेजी से आपकी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। फिर वो कज़ाक चंद कदम के फासले पर ठहर गए। हजरत निजामुद्दीन औलिया इनके सामने थे। आपको यकीन हो चला था कि कज़ाकों की दस्त बुर्द से महफूज नहीं रह सकेंगे, मगर अचानक कज़ाकों ने अपना रुख बदला और तेजी से भागते हुए तारीख जंगल के किसी गोशे में गुम हो गए। हजरत निजामुद्दीन औलिया इस वाक़े का जिक्र करते हुए फरमाया करते थे, ये पीर मुर्शिद के बख्शे हुए पैरहन और कम्बल की बरकत थी कि या तो वो कज़ाक अंधे हो गए थे या फिर मैं उन्हें नजर नहीं आया। दिल्ली पहुंचकर हजरत महबूब इलाही हजरत शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल की खिदमत में हाजिर हुए और पीर मुर्शिद की बेपनाह नवाजिशात का जिक्र किया। हजरत शेख नजीबुद्दीन मुतवक्किल ये तमाम माजरा सुनकर बहुत खुश हुए और बेख्तियार फरमाया, निजामुद्दीन मोहम्मद तुम खुश नसीब हो कि बहुत जल्द आसूदा मंजिल हो गए, वरना इस रास्ते में तो उम्रें तमाम हो जाती हैं और मंजिल का धुंधला सा निशान तक नजर नहीं आता। दिल्ली पहुंचते ही हजरत निजामुद्दीन औलिया को पीर मुर्शिद की नसीहतें याद आईं। आप दूसरे जरूरी कामों को नजरअंदाज करके सबसे पहले अपने एक दोस्त के मकान पर तशरीफ ले गए। ये वही दोस्त था जिससे कुछ अरसे कबल हजरत महबूब इलाही ने एक किताब पढ़ने के लिए मुस्तआर ली। जैसे ही उस दोस्त से मुलाकात हुई हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, ए मखदूम तुम्हें याद होगा एक बार मैंने तुमसे एक किताब आरियतन ली थी। इत्तफाक से वो किताब गुम हो गई और मैं इस दौरान हजरत बाबा फरीद की खिदमत में हाजिर होने के लिए अजूदन चला गया। फिर तुम क्या चाहते हो मौलाना निजामुद्दीन? दोस्त ने पूछा। वो किताब दोबारा तो मिल नहीं सकती और मेरी माली हैसियत भी इस काबिल नहीं कि मैं दूसरी किताब खरीद कर तुम्हें दे सकूँ। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, मेरे जहन और दिल पर एक बोझ सा है और इस बारे ग्राह को उतारने की एक ही सूरत है कि मैं इस किताब को दोबारा सफात पर मुंतकिल कर दूं। बस जरा मुझे कुछ कागजात मैसर आ जाएं, मुझे चंद दिनों की मोहलत और दे दो। दोस्त ने हजरत निजामुद्दीन औलिया की बात बहुत गौर से सुनी। कुछ देर तक वो गहरे सुकूत के आलम में हजरत महबूब इलाही के चेहरे मुबारक को देखता रहा, फिर नहायत पुरसोस लहजे में कहने लगा, मौलाना निजामुद्दीन, तुम जिस जगह से आए हो वहाँ की यही बरकत है कि इंसान को अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है और दिल से दुनिया की मोहब्बत रुखसत हो जाती है। अब तुम इस किताब को भूल जाओ, वो एक दोस्त की तरफ से दूसरे दोस्त के लिए तोहफा था। इस वाक़े से दो तारीखी हकीकतें सामने आती हैं। एक ये कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अपनी गुरबत के सबब चंद कागजात भी नहीं खरीद सकते थे। दूसरे ये कि हज़रत महबूब इलाही अपने गैर मामूली हाफ़ते के सहारे पूरी किताब दोबारा तहरीर कर सकते थे। इसके बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को एक और शख्स याद आया जिसकी कुछ रकम आप पर कर्ज थी। वो शख्स कपड़े का एक ताजिर था जिससे हज़रत महबूब इलाही ने कुछ कपड़ा खरीदा था। इस सिलसिले में इस दुकानदार के 20 जीतल यानी सिक्के आप पर कर्ज थे। इस वाक़े का जिक्र करते हुए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, जब मैं अजुधन से दिल्ली रवाना हुआ था तो पीर मुर्शिद ने मुझे 10 चीतल इनायत किए थे। मैंने दुकानदार से मुलाकात की और तमाम हालात बयान करते हुए कहा, ए अजीज, मैंने एक बार तुमसे जो कपड़ा खरीदा था उसकी कीमत मुझ पर वाजिबुल अदा है। फिल वक्त मैं मुकम्मल अदायगी नहीं कर सकता, बस यही 10 चीतल है, मेरा कुल सरमाया है, तुम इन्हें रख लो, बाकी रकम इंशाल्लाह जल्द से जल्द अदा करने की कोशिश करूंगा। कपड़े का ताजिर हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के इस तर्ज अमल से बहुत खुश हुआ और पुरजोश लहजे में कहने लगा, सैयद, तुम जिस दरबार से आ रहे हो उसकी यही शान है और जिन बुजुर्ग ने तुम्हें बैत की सादत बख्शी है उनकी सोबत का यही असर होता है। ये कहकर उसने बाकी रकम माफ कर दी। अजुदन से वापस आकर हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने दिल्ली की एक सराय में कायम किया। कुछ दिनों के बाद अमीर खुसरो के नाना रावत अर्थ का मकान खाली हुआ। हजरत महबूब इलाही इस मकान में मुंतकिल हो गए। ये मकान अपनी जाहिरी साख के एतबार से एक शानदार हवेली नजर आता था। इसकी 3 मंजिलें थीं। पहली मंजिल में सैयद मोहम्मद किरमानी अपने खानदान के साथ रहते थे। सैयद मोहम्मद हजरत बाबा फरीद की शोहरत सुनकर अजुदन हाजिर हुए थे और फिर हल्का इरादत में शामिल हो गए थे। जब हजरत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली तशरीफ लाए तो सैयद मोहम्मद किरमानी भी अपने बीवी बच्चों के हमरा इसी तारीखी शहर में चले आए। रावत अर्ज के मकान की दूसरी मंजिल में हजरत निज़ामुद्दीन औलिया क्याम फरमा थे। तीसरी मंजिल में मुरीद और दूसरे अकीदतमंद रहते थे और इसी जगह खाना वगैरह पकता था। कुछ दिन बाद रावत अर्ज के बेटे हजरत अमीर खुसरो के मामू अपनी जागीरों से वापस आ गए और हजरत निज़ामुद्दीन औलिया से मकान खाली करने के लिए कहा। मुझे थोड़ी सी मोहलत दो, हजरत महबूब अली ने फरमाया, मुनासिब जगह मिलते ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तुम बहाना साजी कर रहे हो। रावत अर्ज के बेटे हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के मुकाम से नावाकिफ थे, इसलिए गुस्ताखाना दर्ज अमल के मुर्तकिब हुए। हजरत महबूब इलाही ने बार बार अपनी माजूरी जाहिर की मगर वो दुनियादार लोग थे, एक दरवेश की मजबूरी को ना समझ सके। यहाँ तक कि रावत अर्ज के बेटों ने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया और हुकूमत के कारिंदे इस तरह सर पर आकर खड़े हो गए जैसे हजरत निज़ामुद्दीन औलिया मकान पर गाजबाना कब्जा करना चाहते हों। माज़ा अल्लाह, हजरत महबूब इलाही ने हुकूमत के कारिंदों से भी मोहलत तलब की मगर आपकी बात किसी ने नहीं सुनी। आखिर हजरत निज़ामुद्दीन औलिया इस मकान से बाहर निकल आए। किताबों के सिवा घर में कोई दूसरा सामान नहीं था। सैयद मोहम्मद किरमानी और दूसरे अकीदतमंदों ने किताबें अपने सरों पर उठाई और इन खाना बदोशों की तरह चल दिए जिनका बजाहिर कोई ठिकाना नहीं था। बड़ी अजीब सूरत हाल थी। दरवेशों का यह काफिला बेघरी के आलम में कहाँ जाता। कुछ देर तक ये मर्दान खुदा हैरत और परेशानी की कैफियत में खड़े रहे, फिर अल्लाह के भरोसे पर एक तरफ चल दिए। कुछ फासले पर सिराज बकाल का मकान था और इसके सामने एक मस्जिद थी जिसे छप्पर वाली मस्जिद के नाम से याद किया जाता था। चलते चलते हजरत महबूब इलाही की नजर इस मस्जिद पर पड़ी। आपने मुरीदों और अकीदतमंदों को रुक जाने का इशारा किया। यह अल्लाह का घर है, इस पर तो कोई इंसान अपनी मिल्कियत का दावा नहीं करेगा। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया, किताबें यहाँ रख दो। अलगर्ज दिल्ली के महफिल शिकन की किताबें छप्पर वाली मस्जिद में रख दी गईं और महफिल शिकन ने वो रात मस्जिद में गुजारी। सैयद मोहम्मद किरमानी अपने बीवी बच्चों के साथ मस्जिद की सीढ़ियों पर पड़े रहे। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के जाने के बाद महल्ले के कुछ बुजुर्गों ने रावत अर्ज के बेटों से कहा, आपको इन दरवेशों के साथ ये जारहाना सलूक रवा नहीं रखना चाहिए था। बड़ी बरकत थी इन लोगों के दम से, पूरे इलाके में एक अजीब सी रोशनी का एहसास होता था। रावत अर्ज के बेटे दौलत और इख्तदार के नशे से सरशार थे। मुतकबराना लहजे में कहने लगे, फिर हम खूब जानते हैं इन दरवेशों को, दुनिया कमाने का ये भी एक अंदाज है। फिर इसी रात मकान में आग लग गई और इस शानदार इमारत की तीनों मंजिलें जमीन बोस हो गई। आग बुझाने की बहुत कोशिश की गई मगर आग इन्हें नहीं बुझी और सब कुछ जलकर खाकतर हो गया। अहले मोहल्ला हैरान थे कि इस पुख्ता इमारत में आग कैसे लगी। अगर घास फूस की झोपड़ी होती तो ख्याल गुजर सकता था कि कोई चिंगारी पड़ोस से उड़कर आई होगी और उसने सब कुछ फूंक दिया होगा, मगर वो तो पत्थरों से बनी हुई एक मजबूत तरीन इमारत थी, फिर इसमें आग किसने लगाई। रावत अर्ज के बेटे दम बहुत खड़े रहे और इनकी समातों में पड़ोसियों के अल्फाज गूंजते रहे। बड़ी बरकत थी इन लोगों के दम से, वो क्या गए कि इसके साथ रहमत चली गई और जहमत बाकी रह गई। ये इसी करामत का अक्स था जो तकरीबन 70 साल पहले अजमेर के एक मैदान में जाहिर हुई थी। राजपूत हुक्मरान पृथ्वीराज चौहान के कारिंदों ने भी हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से इसी अंदाज में कहा था, ये राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है, इसे खाली कर दो। जवाब में हजरत सुल्तान उल हिंद ने फरमाया था, हम तो उठे जाते हैं मगर हमारे बाद जो भी यहाँ बैठेगा वो दोबारा नहीं उठेगा। फिर जब पृथ्वी चौहान के सैकड़ों ऊँट इस मैदान में बैठे तो जमीन ने इन्हें पकड़ लिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया को भी इसी जाबराना अंदाज में घर से बेदखल किया गया था। बेशक महबूब इलाही ने रावत अर्ज के बेटों को बद्दुआ नहीं दी थी मगर आपकी दिल आजारी तो हुई थी और यही खलिश बरक़े बला बनकर टूटी। आप उठे तो इस जगह से बरकत भी रुखसत हो गई और रावत अर्ज का मकान राख का एक ढेर बन गया। हजरत निजामुद्दीन औलिया के साथ बदसुलूकी का ये वाकया सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के दौर हुकूमत में पेश आया। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद एक दरवेश हुक्मरान था और कुरान करीम की किताबत करके अपनी रोजी हासिल करता था। फरमानवाए हिंद हजरत निजामुद्दीन औलिया के पीर मुर्शिद हजरत बाबा फरीद से बेबना अकीदत रखता था। एक बार हजरत शेख की खिदमत में हाजिर होना चाहता था मगर वजीर सल्तनत गयासुद्दीन बलबन ने रास्ते की दुश्वारियों का जिक्र करके इसे सफर से बाज रखा और खुद एक लश्कर कसीर लेकर अजूदन हाजिर हुआ। अगर सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद या गयासुद्दीन बलबन को मालूम हो जाता कि हजरत बाबा फरीद के चहीते मुरीद के साथ रावत अर्ज के बेटों ने यह सुलूक किया है तो इन्हें हुकूमत हिंद की तरफ से सख्त सरजनिश की जाती और हजरत महबूब इलाही के लिए बेहतरीन रिहाइश गाह का इंतजाम कर दिया जाता। मगर अल्लाह को यह मंजूर नहीं था कि हजरत निजामुद्दीन औलिया किसी शहनशाह या वजीर के एहसान मंद होते। वो जिस शहनशाह मार्फत के दरबार से फक्र कनात का ताज पहनकर दिल्ली तशरीफ लाए थे उसका तकाजा यही था कि साहिबान ने वसाइल और असबाब से बेनियाज होकर हर हाल में अपने खालिक का शुक्र अदा करें। सात कागजी हजरत शेख सदरुद्दीन के मुरीदों में से था। दूसरे रोज उसे इस वाक़े का पता चला तो गिरिया उजारी करता हुआ हजरत निजामुद्दीन औलिया की खिदमत में हाजिर हुआ। शेख मेरे होते हुए आप इस तरह बेआरामी की जिंदगी बसर करें, अब मैं किसी बंदे खुदा को जहमत देना नहीं चाहता। हजरत महमूद इलाही ने दरे पर्दा रावर तर्ज के बेटों के सुलूक की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अभी तो मैं अपने अल्लाह के घर का मेहमान हूँ, अगर इसके बंदों को मेरा यह अंदाज क्याम भी पसंद नहीं आया तो मैं सहरा की जानिब निकल जाऊंगा। साद कागजी बहुत देर तक खुशामद करता रहा। आखिर इसकी खुशनूदी के लिए हजरत महबूब इलाही छप्पर वाली मस्जिद से साद कागजी के मकान में मुंतकिल हो गए और सैयद महमूद किरमानी के अहले खाना के लिए किसी दूसरी जगह का इंतजाम कर दिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया एक माह तक यहाँ मुकीम रहे। फिर जब दूसरी जगह तशरीफ ले जाने लगे तो साद कागजी ने 10 बस्ता अर्ज किया, शेख ये किस गलती की सजा है, गुलाम को खिदमत से महरूम किया जा रहा है। साद तूने मेजबानी का हक अदा कर दिया मगर मैं अपने दिल का क्या करूं कि किसी जगह ठहरने ही नहीं देता। हजरत महबूब इलाही ने फरमाया, जहां जा रहा हूं वहां भी चंद दिनों से ज्यादा नहीं ठहरूंगा। इसके बाद आप रकाबदार की सराय के एक घर में तशरीफ ले गए। ये सराय पुल कैसर के करीब वाक़ थी। सैयद मोहम्मद किरमानी भी अपने खानदान वालों के साथ इसी सराय के एक हजरे में मुकीम हो गए। इस सराय में भी आपका क्याम बहुत मुख्तसर रहा। यहाँ से उठकर आप शादी गुलाबी के घर में तशरीफ ले गए। कुछ दिन बाद शमसुद्दीन शराबदार के अजीज व करबा आपकी खिदमत में हाजिर हुए। ये लोग हजरत निजामुद्दीन औलिया से बहुत अकीदत रखते थे। इनके बेहद इसरार पर आप शमसुद्दीन शराबदार के घर तशरीफ ले गए। शराबदार एक ओधा था जिसके सुपुर्द बादशाह को पानी पिलाने का काम था। हजरत महबूब इलाही इस मकान में कई साल तक मुकीम रहे। अजूदन से आने वाले अकीदतमंद इसी मकान में आपसे मुलाकात करते थे। गुरबत अफलास का ये आलम था कि कई कई वक्त रोटी मैसर ना आती। इस सिलसिले में खुद हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के अहदे हुकूमत में अशियाए ज़रूरत की अजानी का ये आलम था कि दो जीतल में एक मन खरबूजे मिलते थे, मगर पूरी फसल गुजर गई और मैं खरबूजा चख भी नहीं सका। यही आटे का था, लेकिन मैं एक रोटी खरीदने की सलाहियत भी नहीं रखता था। इसी जमाने का वाकया है कि हजरत जामुद्दीन औलिया शहर पनाह के इस बुर्ज में मुकीम थे, जो मंदरा दरवाजे के करीब है। यहाँ आप जिक्र इलाही भी करते थे और तलबा को तालीम भी देते थे। हज़ब रिवायत कई रोज गुजर गए और आपके खाने के लिए कोई चीज मयसर नहीं आई। फिर भी इस्तेकामत का वही आलम था, पूरी तवज्जो और खुशदिली के साथ तालिब इल्मों को दर्द देते। इत्तफाक से एक शागिर्द जो अपने उस्ताद के शब रोज पर गहरी नजर रखता था, ये राज जान गया कि हजरत शेख ने कई दिन से खाना नहीं खाया। तालिब इल्म खुद भी बहुत गरीब था, इसलिए खुद तो उस्ताद के खाने का इंतजाम नहीं कर सका, लेकिन पड़ोसियों के पास जाकर कहने लगा, तुम्हारे दस्तरखानों पर अनवाउ इस्लाम के खाने जमा हैं, मगर तुम्हें यह भी मालूम नहीं कि तुम्हारे पड़ोस में किसी अजीम हस्ती ने कई दिन से एक लुकमा भी नहीं खाया है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के ये पड़ोसी कपड़ा बुनने का काम करते थे। शागिर्द की जबानी हजरत शेख का हाल सुनकर बहुत अफसरदा हुए। फिर इन लोगों ने कई किस्म के खाने पकाए और हजरत निजामुद्दीन औलिया की खिदमत में हाजिर हुए। आपने इसे गैबी इंतजाम समझ कर खाने पर रजामंदी कर दी। फिर जब खाना लाने वालों में से एक शख्स आपके हाथ धुला रहा था, तो उसकी जबान से बेख्तियार निकल गया, अल्लाह भला करे इस तालिब इल्म का जिसने हमें खबर कर दी। ये सुनते ही हजरत महबूब इलाही ने अपने दोनों हाथ खींच लिए और इस शख्स से फरमाया, क्या खबर दी थी उस तालिब इल्म ने? यही कि आप कई दिन के फाके से हैं। हाथ धुलाने वाले ने सादगी से कहा, मुझे माफ रखो। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने पुरजलाल लहजे में फरमाया, गलत कहा इस तालिब इल्म ने, मैं हरगिज फाके से नहीं हूँ। शदीद भूख के आलम में भी आपकी गैरत इस एहसान को बर्दाश्त नहीं कर सकी। खाना लाने वाले बहुत देर तक खुशामद करते रहे, मगर आपने इनकी ज़ियाफ़त कबूल नहीं की। बड़ी शान बेनियाजी के साथ फरमाया, मेरी फाका कशी का मामला अल्लाह के सिवा किसी गैर पर क्यों खुले? अगर रज़ाक़ आलम खुद तुम्हारे दिलों में यह बात डालता तो मैं तुम्हारी मेज़बानी कबूल कर लेता। अल्लाह मुझे इस वक्त से महफूज रखे जो दूसरे मेरी भूख का हाल जान ले और फिर लाने वाले इस तरह मेरे सामने खाना लाए कि फला शख्स ने उन्हें मेरी फाका कशी की खबर दी थी। हजरत निजामुद्दीन औलिया शहर की पुरशोर फजा से हमेशा बेजार रहते थे। आप सुकून और यकसुई के तालिब थे और ये दोनों चीजें शहरी इलाकों में नापैद थी। अपनी इसी कैफियत के बारे में हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं, शुरू ही से मेरा दिल इस शहर में नहीं लगता था। मैं एक रोज कतलक खान के हौस पर था, कुरान मजीद हिफ्ज कर रहा था। अचानक मेरी नजर एक दरवेश पर पड़ी जो याद इलाही में मशगूल थे। मैं इन दरवेश के करीब जाकर बैठ गया। फिर जब वो जिक्र से फारिग हो गए तो मैंने इनसे अर्ज किया, क्या आप इसी शहर के रहने वाले हैं? हाँ, इन दरवेश ने कहा। क्या आप अपनी मर्जी से इस शहर में रहते हैं? मैंने दोबारा अर्ज किया। ये बात नहीं है, दरवेश ने जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने एक वाक़ा सुनाते हुए कहा कि कमाल दरवाजे के बाहर जहाँ चबूतरे पर शहीदों की चार दीवारी बनी हुई है, वहाँ एक दरवेश बैठे हुए थे। मैं इनके करीब पहुँचा तो उन्होंने मुझे मुखातिब करते हुए फरमाया, अगर अपने ईमान की सलामती चाहते हो तो इस शहर से चले जाओ। मैंने इसी वक्त मुसम्मम इरादा कर लिया था कि ये शहर छोड़कर कहीं और चला जाऊँगा, मगर आज 25 साल हो गए हैं कि जब भी इस शहर से जाने का इरादा करता हूँ तो कोई ना कोई रुकावट पेश आ जाती है। ये वाकया बयान करने के बाद हजरत महबूब इलाही ने फरमाया कि इन दरवेश की बात सुनकर मैंने ये शहर छोड़ देने का तहिया कर लिया था। कभी सोचता कि फला मुकाम पर चला जाऊं, कभी ख्याल आता कि पटियाली का रुख करूं कि वहां एक तुर्क रहता था। पटियाली जिला ईटा का एक कस्बा है जहाँ हजरत अमीर खुसरो पैदा हुए थे और यही आपकी ननिहाल थी। हजरत जामुद्दीन औलिया ने इसी की तरफ इशारा किया है। कैसेट नंबर 35 का यहाँ इख्तिताम होता है। मखिया किताब अब आप कैसेट नंबर 36 में समाप्त फरमाइए।